ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है जादू।
जादू।
ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ आता है।
हैरी पॉटर की दुनिया, सर्कस की करतब,
या फिर वो गांव देहात की कहानियां किसी रहस्यमयी शक्ति के बारे में।
बिल्कुल। और ज्यादातर हम इसे या तो मनोरंजन मान लेते हैं या फिर
अंधविश्वास
कि ये सब पुरानी बातें हैं।
हाँ, लेकिन क्या ये इतना ही है? क्या जादू सिर्फ एक करतब है, या ये हमारे इतिहास और हमारे सोच का कोई गहरा हिस्सा है जो शायद आज भी किसी और रूप में जिंदा है?
आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, और इस सफर में हमारी गाइड होंगी ओएन डेविस की किताब मैजिक, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
ये किताब उस सोच को तोड़ती है कि भाई विज्ञान आया और जादू खत्म हो गया।
हाँ, ये बताती है कि जादू ने हमेशा हमारे साथ रहने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया है।
तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेखक के बारे में जानना जरूरी है। ओएन डेविस ये कौन है? कोई जादूगर तो नहीं है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओएन डेविस हर्टफोर्डशायर विश्वविद्यालय में सामाजिक इतिहास के प्रोफेसर हैं।
अच्छा, एक इतिहासकार।
हाँ, उनका काम जादू करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि समाज पर जादू का क्या असर रहा है।
ये तो और भी दिलचस्प बात है। मतलब उनका सवाल ये नहीं है कि क्या मंत्र काम करते हैं,
नहीं,
उनका सवाल है कि इंसानों को मंत्रों की जरूरत महसूस ही क्यों हुई।
एकदम सही पकड़ा। उनका नजरिया पूरी तरह से एकेडमिक है। वो जानना चाहते हैं कि लोगों ने इस पर यकीन क्यों किया, सत्ता और धर्म ने इसे कैसे देखा। बहुत ही संतुलित नजरिया है उनका।
तो फिर इस किताब का मुख्य आइडिया क्या है? क्या ये सिर्फ जादू टोने की कहानियों का एक कलेक्शन है?
बिल्कुल नहीं। किताब का जो सबसे बड़ा जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जादू कोई पिछड़ी हुई सोच नहीं है।
जिसे विज्ञान ने आके मिटा दिया।
हाँ, डेविस कहते हैं कि ये एक मिथक है। उनका तर्क है कि जादू एक, क्या कहते हैं, एक बहुत ही डायनामिक और लचीली व्यवस्था है।
लचीली व्यवस्था, ये थोड़ा अजीब है सुनने में, जादू और लचीलापन,
है ना? पर उनका मतलब है कि जादू ने हर जमाने की जरूरतों और चिंताओं के हिसाब से खुद को बदला है, अपना रूप बदला है।
अच्छा, मतलब जैसे जरूरतें बदली, जादू का चेहरा भी बदल गया।
बिल्कुल। प्रागैतिहासिक गुफाओं के चित्रों से लेकर आज के ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग तक, वो कभी गायब नहीं हुआ।
वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर जादू है क्या?
और यहीं डेविस पहली चुनौती रखते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कोई एक परिभाषा है ही नहीं।
कोई एक परिभाषा नहीं?
नहीं, जिसे हम जादू कहते हैं वो अक्सर एक लेबल होता है, एक ठप्पा।
जो कौन लगाता था?
सत्ता में बैठे लोग, पुजारी, राजा, वो उन प्रथाओं पर ये ठप्पा लगाते थे जिन्हें वो नाजायज ठहराना चाहते थे।
मतलब ये तो देखने वाले की नजरिए की बात हो गई।
हाँ, मेरे लिए जो प्रार्थना है वो आपके लिए जादू हो सकता है।
और यहीं से वो सीधी लाइन वाली थ्योरी को भी तोड़ते हैं
कि पहले जादू, फिर धर्म, फिर विज्ञान।
हाँ, वो कहते हैं ये तीनों हमेशा से एक साथ मौजूद रहे हैं,
एक दूसरे में गुथे हुए।
तो ये सिर्फ यूरोप की कहानी तो नहीं होगी? किताब हमें दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ले जाती है।
हाँ, और ये बहुत जरूरी है। जैसे प्राचीन मिस्र में हेका नाम की एक शक्ति थी।
हेका?
हाँ, हेका। इसे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि दुनिया को बनाने वाली एक दिव्य ऊर्जा माना जाता था। ये धर्म और शासन का हिस्सा था।
अच्छा, तो मिस्र में ये एक तरह से ऑफिशियल था, पर मैं सोच रहा था ग्रीस और रोम के बारे में, वहां तो तर्क और दर्शन का बोलबाला था, वहां क्या हुआ?
बहुत अच्छा सवाल है। ग्रीस और रोम में आकर ना चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गईं। वहां एक बंटवारा हुआ।
कैसा बंटवारा?
जो अनुष्ठान पूरे समाज की भलाई के लिए होते थे उन्हें धर्म माना जाता था, लेकिन अगर कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ करता,
जैसे किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए,
हाँ, या किसी को अपने प्यार में डालने के लिए, तो उसे जादू कहकर नीची नजर से देखा जाता था।
तो यहीं से जादू की एक खतरनाक या अवैध छवि बननी शुरू हुई।
बिल्कुल। अब सवाल यह है कि ये जादूगर करते क्या थे?
हाँ, क्या क्या करते थे?
देखिए, भविष्य बताना, जैसे ज्योतिष, कीमिया मतलब
धातु को सोने में बदलना,
हाँ, और नेक्रोमैंसी यानी मृतकों की आत्माओं से बात करना।
ये तो सब बड़े स्तर की चीजें हो गई। आम लोगों की जिंदगी में जादू था?
बहुत ज्यादा। ताबीज बनाना, नजर उतारने के लिए मंत्र पढ़ना, और एक बहुत ही आम चीज थी सहानुभूति जादू।
सहानुभूति जादू, वो क्या होता है?
मतलब जैसा यहाँ वैसा वहां। इसका क्लासिक उदाहरण है किसी की गुड़िया बनाकर उसे प्रभावित करना।
अच्छा, वो वुडू डॉल जैसा कुछ?
हाँ, एक तरह से। फिर एक बड़ा मोड़ आया जब ये सारा ज्ञान किताबों में लिखा जाने लगा, जिन्हें ग्रिमोर कहते हैं।
इसका क्या असर हुआ होगा?
इसका दोहरा असर हुआ। एक तरफ तो की ऑफ सोलोमन जैसी किताबों ने जादू को एक अकादमिक विषय बना दिया, अब इसे सीखा जा सकता था,
उसे एक तरह की इज्जत मिली।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ
ये बहुत खतरनाक भी हो गया होगा। अब किसी के घर से ऐसी किताब मिलना ही सबूत बन गया।
एकदम सही, ये तो बहुत खतरनाक बात है। मतलब जिसके पास किताब है उसके पास शक्ति तो है, पर वो खुद शक के दायरे में भी है।
समाज ने इसे काबू में करने की कोशिश तो की होगी।
हाँ, और यहीं से कहानी यूरोप में एक बहुत गंभीर मोड़ लेती है। ईसाई चर्च ने जादू को कंट्रोल करने की जबरदस्त कोशिश की।
कैसे?
उन्होंने एक बहुत चालाकी भरा बंटवारा किया, कहा कि जादू दो तरह का होता है।
अच्छा।
पहला था प्राकृतिक जादू, मतलब नेचुरल मैजिक। इसमें प्रकृति की छिपी शक्तियों का अध्ययन था, जड़ी बूटियां, ग्रह, चुंबक, ये एक तरह से विज्ञान जैसा था।
तो उसकी इजाजत थी
एक हद तक। हाँ, पर जो दूसरा था वो खतरनाक था,
शैतानी जादू।
बिल्कुल, डेमोनिक मैजिक। चर्च का कहना था कि ये शक्ति शैतान से सौदा करके मिलती है, और यही सबसे बड़ा पाप था।
और इसी सोच ने विच हंट्स की जमीन तैयार की।
हाँ, 15वीं से 18वीं सदी तक जो यूरोप में डायन शिकार हुआ। लेकिन डेविस कहते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक कट्टरता नहीं थी।
तो फिर क्या था?
ये असल में सत्ता का एक क्रूर खेल था। चर्च और राजशाही दोनों अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए जादू टोने के आरोप का एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे।
फिर आया इनलाइटनमेंट का दौर, तर्क और विज्ञान का युग। उसने तो खत्म कर दिया होगा सबको।
यही तो सबसे बड़ा मिथक है जिसे ये किताब तोड़ती है।
अच्छा,
जादू मरा नहीं, बस अंडरग्राउंड हो गया। वो गुप्त समाजों में जिंदा रहा, और 19वीं सदी में जब लोग सिर्फ तर्क से उबने लगे तो ये एक नए रोमांटिक रूप में फिर सामने आया,
और आज तक चल रहा है।
हाँ, 20वीं सदी में विक्का नाम का एक पूरा धर्म बन गया, और आज तो हैरी पॉटर ने इसे पॉप कल्चर बना दिया है। इंटरनेट पर हजारों ऑनलाइन समुदाय हैं। रूप बदला है, माध्यम बदला है, पर जादू यही है।
इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जादुई सोच यूनिवर्सल है।
बिल्कुल, ये किसी एक संस्कृति या समय की बात नहीं है।
ये शायद अनिश्चितता के सामने हमारा एक बहुत ही बेसिक मानवीय रिएक्शन है।
हम इसे भारत में तो हर दिन देखते हैं, परीक्षा से पहले दही चीनी खाना,
या बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाना।
हाँ, या फिर बिल्ली का रास्ता काटना। ये सब क्या है? ये उसी जादुई सोच का हिस्सा है, दुनिया पर थोड़ा सा कंट्रोल पाने की एक मनोवैज्ञानिक कोशिश।
दूसरी बड़ी बात जो मुझे बहुत हैरान कर गई वो है जादू, धर्म और विज्ञान के बीच की धुंधली रेखाएं। हम इन्हें अलग अलग डिब्बों में देखते हैं,
जबकि इतिहास में ये हमेशा मिले जुले थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जॉन डी।
जॉन डी?
हाँ, वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सलाहकार थे, एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, और साथ ही वो देवदूतों से बात करने के लिए जादुई अनुष्ठान करते थे।
वाह, मतलब उनके लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं था।
कोई नहीं, सब ज्ञान के रास्ते थे।
और तीसरा विषय जो शायद सबसे गहरा है कि जादू असल में शक्ति और एजेंसी का एक जरिया है।
सही कहा, मंत्रों और औषधि से कहीं ज्यादा जादू का सार है कंट्रोल और मतलब की तलाश में।
ये उन लोगों के लिए एक सहारा रहा है जिन्हें समाज में शक्तिहीन महसूस कराया गया।
बिल्कुल, जैसे महिलाएं या हाशिए पर मौजूद समुदाय।
ये उन्हें अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में होने का एक एहसास देता है, भले ही वो एहसास प्रतीकात्मक हो।
एकदम, ये अपनी किस्मत को कोसने की जगह उसे बदलने की एक कोशिश है।
किताब में कुछ विचार ऐसे हैं जो वाकई दिमाग में रह जाते हैं। जैसे एक जगह डेविस कहते हैं, जादू विज्ञान का विपरीत नहीं है, यह वह छाया है जो विज्ञान डालता है।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसका क्या मतलब निकाले? मतलब विज्ञान हमें बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है, पर वो हमारी भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं करता, वो चीजों का मतलब नहीं बताता।
और जादू उसी खाली जगह को भरता है।
हाँ, वो उन सवालों से जूझता है जिन्हें अकेला तर्क नहीं सुलझा सकता।
एक और कमाल का विचार है, जादू को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये कभी भी मुख्य रूप से मंत्रों और औषधि के बारे में नहीं था, बल्कि शक्ति और अर्थ के बारे में था।
ये हमें सत्ता से नीचे देखने के लिए कहता है, किसी अनुष्ठान के पीछे की मंशा को देखो, वो व्यक्ति क्या हासिल करना चाहता है, सुरक्षा, सफलता, प्यार।
और आज के जमाने के लिए ये विचार तो एकदम सटीक है। डिजिटल युग में हमने जादुई सोच को नहीं छोड़ा है, हमने बस इसे व्यक्त करने के नए तरीके खोज लिए हैं।
अरे, ये तो हम हर रोज देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर वो मैसेज कि इसे 10 लोगों को भेजो तो अच्छी खबर मिलेगी,
या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो। कि सिर्फ सोचने से सब मिल जाएगा।
बिल्कुल, पैकेजिंग नहीं है पर अंदर की सोच वही है, दुनिया को अपने काबू में करने की इच्छा।
तो इस सारी जानकारी का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करती है,
अपने छोटे मोटे अंधविश्वासों को पहचानने में।
हाँ, जैसे किसी खास शर्ट को लकी मानना और ये समझना कि ये नॉर्मल है, मानवीय स्वभाव का हिस्सा है।
दूसरा बड़ा फायदा है सांस्कृतिक समझ। हम दूसरी संस्कृतियों की मान्यताओं को पिछड़ा या अतार्किक कहकर खारिज करने से बचते हैं।
हम समझते हैं कि हर विश्वास के पीछे गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं।
और आखिरी बात, ये हमें आज की दुनिया को डिकोड करने में मदद करता है कि कैसे विज्ञापन, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री या राजनीतिक थ्योरीज हमारी इसी सोच का फायदा उठाते हैं।
आसान समाधान और दुनिया पर नियंत्रण का वादा करके।
बिल्कुल, जब कोई विज्ञापन कहता है कि एक क्रीम आपकी जिंदगी बदल देगी,
या कोई गुरु कहता है कि एक मंत्र आपकी सारी समस्याएं हल कर देगा,
तो वो हमारी उसी गहरी इच्छा को निशाना बना रहे हैं,
एक जादुई समाधान बेच रहे हैं।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी सीख क्या है?
मेरे लिए तो ये है कि दुनिया से जादू का खत्म होना कभी हुआ ही नहीं, ये विचार ही एक मिथक था। जादू हमेशा हमारे साथ था और हमेशा रहेगा, बस रूप बदल बदल कर।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जादू, धर्म और विज्ञान के बीच की दीवारें कितनी बनावटी हैं। इतिहास में ये हमेशा एक दूसरे से मिले हुए थे।
बिल्कुल, ज्ञान एक बहती नदी की तरह है, हम उसे अपनी सुविधा के लिए नहरों में बांट देते हैं, पर स्रोत तो एक ही है।
तो इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप खुद को कोई छोटा मोटा अंधविश्वास करते हुए देखें, चाहे वो लकड़ी छूना हो या कोई खास पेन इस्तेमाल करना हो, तो एक पल के लिए रुक कर सोचें कि यह व्यवहार आपकी किस गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा कर रहा है। क्या ये नियंत्रण की जरूरत है, आशा की, या बस अनिश्चितता के डर से निपटने का एक तरीका? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।